نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صحيح مسلم. ہمیشہ قرآن پاک کی آیت سے درس شروع ہوتا ہے موسلی. آج آپ کے ساتھ ایک حدیث پہ بات کروں گی، کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ صبر اور شکر ہے، اور صبر اور شکر کو جتنے خوبصورت طریقے سے اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات میں اتنی بڑی بات کہہ دے. تو آئیے اس حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مطلب اور مراد کیا ہے. حضرت صہیب کی یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، الفاظ کا تھوڑا بہت فرق موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. ہر لفظ پہ غور کرنا سیکھیں. جب میں ایک لفظ بولوں مومن، تو آپ فوراً سوچیں اچھا مومن کون ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، کس کو مومن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد لفظ معاملہ ہے. معاملہ کیا ہے؟ کہ زندگی معاملات کا نام ہے. عملہ یا ملو سے معاملہ، مفاعلہ باب کے وزن پہ جب آتا ہے تو انٹریکشن ہے انگلش میں. اصل میں کہ مومن کا دوسروں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے یا اس کو زندگی میں مختلف حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، تو وہ معاملہ بڑا عجیب ہے. عجیب اردو میں تو ہم عجیب کہتے ہیں نا، عجیب و غریب کو، لیکن عربی میں عجیب عجب کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور عجب کہتے ہیں خود پسندی کو. تو عجیب مراد یہ کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ واقعی جس کی تعریف کی جا سکتی ہے. مطلب یہ کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے، ایک مومن کے اندر یہ صفت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور وہ کیا کہ ہر معاملے میں ہی اس کی خیر ہی خیر ہے. کیسے؟ اس کا سارا معاملہ بھلائی کا معاملہ ہے. کبھی آپ سوچیں زندگی میں کبھی کسی کو یہ محسوس ہوا کہ میں تو ہمیشہ ہی بھلائی پہ ہوں، میرے ساتھ جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، جو مجھے ملتا ہے بہت اچھا ملتا ہے، جو مجھ سے چھوٹتا ہے بہت ہی اچھا چھوٹتا ہے. مراد یہ کہ حالات کے اتار چڑھاؤ کے باوجود، زندگی میں مختلف معاملات کے درپیش آنے کے باوجود، اس کو ہر طرف خیر خیر اور خیر ہی دکھ رہی ہوتی ہے. اور یہ صورت حال سوائے مومن کے کسی کے بھی حصے میں نہیں آتی. یہ بڑا گہرا کرائیٹیرین ہے. میں جب بھی اس حدیث کے اس جملے پہ آتی ہوں تو پھر وہ پوز کرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں نہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی. وجہ کیا؟ کہ اگر یہ کہہ دیا بڑے مسئلے ہیں، بھلائی تو ہے نہیں، خیر تو ہے نہیں، سارے غم میرے نصیب میں، ساری آزمائشیں میرے نصیب میں. جو لوگ یہ بولتے ہیں نا، سچی بتاؤں کہ وہ اپنے ایمان کا پول کھول رہے ہوتے ہیں، کہ وہ بالکل ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ ہے. ایک سچا مومن زندگی کے کسی معاملے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ خیر کا نہیں ہوا. اور یہ ایمان کا ایک ایسی ٹیسٹ ہے. خیر، اگر اسے کوئی فراخی یا آسانی میسر آتی ہے، فراخی ہر طرح سے آ سکتی ہے، مال کی فراخی ہے، اولاد مل جاتی ہے، بڑا گھر مل جاتا ہے، دنیا کی ترقی مل جاتی ہے، جاب بڑی ہو گئی، رزق کے دروازے کھل گئے، کوئی بھی ہو سکتی ہے اور آسانی ہے، تو وہ شکر کرتا ہے. یعنی جب نعمتیں ملتی ہیں، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو وہ پھولتا نہیں ہے، بلکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے خیر کا معاملہ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی مصیبت یا تنگی پڑ جاتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتری اور خیر ہی کا معاملہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ایسے بندے کو کون دکھی کرے، ایسے بندے سے جا کر کون اظہار افسوس کرے، اور ایسے بندے کا حال جا کے کون پوچھے، اور کون ایسے بندے کی جا کے مزاج پرسی کرے. ذرا سی اس حدیث پہ توجہ کرتے ہوئے ہم اپنے ارد گرد کی اس دنیا کو دیکھیں تو ہم عموماً کیا بولتے ہیں؟ فلاں کے گھر افسوس کرنے جانا ہے، ان سے تعزیت کرنی ہے، وہ بڑے دکھی ہیں، ان کو تسلی دینی ہے. ہم اپنے انسانی معاملات میں، خاندانی اور معاشرتی اور سوشل جو ہماری لائف ہوتی ہے، اس میں کیا عموماً دکھ سکھ کے نام پر دوسروں کو جا کر یا تو مبارکیں دینے والے یا پھر ان کو بہت زیادہ تسلیاں دینے والے کام نہیں کر رہے ہوتے؟ اس ایک حدیث پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، تو اس کا مطلب آپ کے پاس کبھی کوئی تعزیت کے لیے نہیں آئے گا. ताज़िए से मुराद वो नहीं है कि किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची और आप उसके पास ना जाएं, मतलब ये कि आप लोगों को कभी दुखी नहीं दिखेंगे। चले मैं अपने वो जुमले बदलती हूँ, यानी इस एक हदीस पे अमल करें ना, आप कभी ज़िंदगी में बीमार हुए लोगों को नहीं पता चलेगा, आप हैं तो होंगे लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपका मामला खैर का है। लोगों ने कहना इनका चेहरा बड़ा खुश होता है, ये बहुत ठीक ठाक लगते हैं, ये बीमार नहीं है। ना लोगों को आप अपनी बीमारियों की लंबी दास्तानें सुनाएंगे, ना आप घुटनों के दर्दों से शुरू करके सर के दर्द पे ख़त्म करेंगे, ना आप शौहर की शिकवे करेंगे, ना बच्चों के बिगाड़ का करेंगे। यानी ऐसे बंदे को ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ लगता है आई नहीं, हत्ता कि उसकी वो कैफियत हो जाती है कि दूसरे लोग उस पर रश करने लगते हैं कि वाह ऐसी किस्मत हो सबकी। उसको अपनी ज़िंदगी में कितने भी चैलेंजेस आते हुए नज़र आए, दूसरों को नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो मुतमईन है, उसको पता है कुल्लुहु खैर, हर एक में खैर है, और इसके ऑपोज़िट खुशी पहुंचती है। तो खुशी के नाम पे वो कोई ऐसे काम नहीं करता जो कि अल्लाह को नाराज़ करने वाले हों। बीसियों बार आपने भी सब्र पे और शुक्र पे दर्स भी सुने होंगे, लेकिन इस मौजू को आज जो मैंने आपके सामने रखना, और ख़ास तौर पे हम अपने रमज़ान की सीरीज़ में रख रहे हैं ना, तो मैंने इसको किस सोच से आपके साथ शेयर करना है कि रोज़ा जो है ना, ये हमें सब्र का भी मौका देता है और हमें शुक्र का भी मौका देता है। कैसे? सब्र है सारे दिन का भूखे प्यासे, और शुक्र है इफ्तारी के वक्त का, है ना? और अगर दूसरे बड़ी पिक्चर में देखिए, सब्र है 29 या 30 दिनों का, तो शुक्र है फिर ईद वाले दिन का। बात समझ रहे? आप गौर से सोचें तो दुनिया में ही अल्लाह सुबहाना ताला हमारे लिए एक के बाद दूसरे हालात ज़रूर ले आता है। तो आपकी मेरी ज़िंदगी में अगर दुख और सुख के वक्त पे अल्लाह को याद करना ना रहे, तो याद रखिए कि हम सारा वक्त लोगों की हमदर्दियाँ समझते रह जाएंगे। अब ये बात सुनकर क्या मतलब, यानी कि ईमान वाला होने का मतलब यह है कि वो दुनिया के हर प्रॉब्लम से फ्री हो गया, टेंशन प्रूफ हो गया, स्ट्रेस प्रूफ हो गया, दिल में आता है ना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि इस मौजू पे बेशुमार चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला के नबी हमें सिखा गए, और इंशाल्लाह ताला जहाँ मौका आएगा हम करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि सब्र और शुक्र हदीस में क्या आता है, हम हदीस की ही तरतीब को अगर सामने रखें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगी। आजब अलमरुल मोमिन, सबसे पहले क्या बात कही आपने, इन असाबतु सर्राउ। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुक्र का सब्र, शुक्र की नेमत के वक्त में अल्लाह के ऊपर राज़ी रहना, ये ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे वक्त में जब नेमत मिलती है, अल्लाह का हुक्म याद रहना, ये ज़्यादा मुश्किल है गम तकलीफ़ के वक्त से। तो दोनों चीज़ों को एक एक साथ रख के अगर आपके साथ शेयर कर लूँ, कि पहले बात हो रही है शुक्र की। अल्लाह के नबी ने कहा कि बंदा जो है वो शुक्र करता है जब भी कुछ मिलता है। अब सवाल पैदा होता है कि आप मैं शुक्र कैसे करें, और शुक्र कहते किसको है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो ना एक वक्त आता है कि आपस में मिल जाती हैं। मैं अक्सर अपनी याद दहानी के लिए और दूसरों के लिए कहती हूँ कि सब्र और शुक्र इज़ इक्वल टू सी सॉ। आप देखते हैं सी सॉ का एक पल्लू नीचे है, एक ऊपर है, कभी वो ऊपर कभी ये नीचे। हमारी ज़िंदगी एक सी सॉ की तरह है। अल्लाह ताला ने सूरत अन्निसा में भी कहा, तिलकल अय्यामुनुदाविलुहा बैनन्नास, हमने इन दिनों को लोगों के बीच में घुमाया है, कभी की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे, कभी गर्मियाँ आती हैं, कभी सर्दियाँ आती हैं। हमारे अपनी ज़िंदगी के कितने फेजेस गुजरते हैं ना, ये सब कुछ हमें क्या बताते हैं कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहेगी। यानी सबसे पहली चीज़ अगर आपको मैं आज दूँ तो वो ये क्या है कि वी शुड एक्सेप्ट दिस कि ज़िंदगी में चेंजेस आएंगी। हम अपने जिस्म के एतबार से दिन रात चेंज हो रहे हैं, हम अपने मिजाज के एतबार से चेंज होते हैं। कभी आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं, चेंज है ना। आप अपने बच्चे को पहले डे केयर में डालती हैं, फिर एक दो साल का हो जाता है आप उठा के स्कूल में ले आती हैं, वो भी स्कूल में दिल उसका लगने लगता है तो आप फिर उसको उठा कर तो कॉलेज में ले जाते हैं, कॉलेज में दोस्तियाँ हुई तो आप उसको लेकर यूनिवर्सिटी में ले गए या वो खुद चला गया, है ना। यानी ज़िंदगी मुस्तकिल तब्दीलियों का नाम है। जिस बंदे ने तब्दीली को कबूल नहीं किया, याद रखिए कि वो कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा। अगर आप और मैं इस बात पे गौर करें, और आज मैं ख़ास तौर पे इसको आपके साथ रखना चाहती हूँ कि सब्र और शुक्र उसी बंदे में होगा जिसका ईमान बिलकदर पुख्ता होगा। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं ईमान की तफसीलात, ईमान मुफस्सल, قدر خیری ہی و شرری ہی من اللہ. میری تقدیر کا خر شر اور خر خیر اللہ کی طرف سے. یہ ہے وہ چیز جو بندے کو شاکر بھی بناتی ہے اور صابر بھی بناتی ہے. جتنے لوگ اس تعریف سے دور ہیں نا, وہ شکوے گلے, اور ان کے خوشیوں میں بھی شکوے نہیں ختم ہوتے, غموں کے شکووں کی تو بات ہی نہیں کرے, اس وقت تو وہ ایسی ڈپریشن میں جا چکے ہوتے ہیں. میں نے بہت کم لوگوں کو خوشی کے موقع پہ بھی خوش دیکھا ہے, واللہ ہی. یہ میری غلط انالیسس ہو سکتی ہے, میں مانتی ہوں. وہ دن, وہ موقع, وہ وقت جس کا کئی سال سے انتظار ہوتا ہے, جب وہ وقت پڑا ہوتا ہے, اس وقت پوچھیں سنائیں اتنی خوش ہیں نہیں, سٹریس ہے, ٹینشن ہے, کوئی ایک مشکل پڑ گئی, کسی کو منا رہے ہیں, کسی روٹھے کو لا رہے ہیں, سٹریس ہی بہت ہے, کھیچلی جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں بہت ہے, تھکن ہی بہت ہو گئی. نقصان کیا ہوا کہ آپ خود نہیں انجوائے کرتے اس ہو کے, یا ان کو دوسرے کر کے چلے جاتے ہیں. مثلا اگر آپ شادیوں کے نام پہ دیکھیے, تو جو لوگ دنیا میں شادی بیاہ کے موقع پہ جو کچھ کرتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے. میں نے کسی ایسے بندے کے منہ سے ایک سینٹینس سنا کہ آج کل شادیاں بور ہو گئی ہیں. بلیو می, میرے لیے ایک وہ شاکنگ نیوز تھی. اور یہ وہ سسٹرز کہہ رہی تھیں کہ جن کے بارے میں میرا گمان ہے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں شادیوں کو سیلیبریٹ کرنے میں, جن کے لیے ایک بہت بگ محاذ ہے شادی, سر سے پاؤں تک اور سوئی سلائی سے لے کر ایک ایک چیز میں اپنے آپ کو اپڈیٹڈ کر کے دیکھنا دکھانا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اب خوشی ہے نا, بعد میں نفل پڑھ لیں گے, پھر بعد میں کر لیں گے, اب اس وقت تو ہمیں ماننی پڑے گی لوگوں کے بات. یعنی آپ یہ سیدھی لفظوں میں کہہ لیں کہ جو اپنی خوشیوں میں اللہ کو ناراض کرنے کا رسک لے لیتے ہیں, لیکن لوگوں کو ناراض نہیں کرتے, جرت نہیں پاتے, انسان ہے نا, نہیں پاتا. وہ کہے اگر کہ خوشیاں یا شادیاں بور ہو گئیں, تو ہم جیسوں کی شادیاں کیا ہیں کہ جن کو اول تو کوئی بلاتا نہیں, کوئی بلا لے تو ایک ہمیں ایکسٹرا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, اور بہت بھی ہماری عزت کرے تو چار دیواری کھینچ کے ہمیں کہتے ہیں بیٹھے اس میں, اب آپ باہر نہ آئے, اندر سے کوئی باہر نہیں آئے گا, پھر ہم جیسوں کی شادیوں کا کیا مزہ ہوگا. بات سمجھ گئے آپ؟ تو میں نے اس چیز سے سیکھا الحمدللہ. اتنی محنت کر کے اگر ایک کہہ رہا شادی میں مزہ نہیں آتا, تو پھر ہم تھوڑی سی بھی کر جائے, نہیں آتا تو پھر نہ آئے, آتا ہے تو پھر آ جائے. زندگی میں جو ہے اس کو اگر آپ نے, میں نے نہیں ایکسیپٹ کیا, جو اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہوا ہے, اگر میں نے آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, پہلے بھی اس کا شکر ادا نہیں کیا, تو یاد رکھیے جب چھینے گا تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کا شکوہ کریں, ہم اس کے لیے گلہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو, مجھے, آنکھیں, کان, سر, جو کچھ بچہ ساتھ لے کے آتا ہے, آپ ذرا گن کے تو دیکھیے, اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے جسم کو دیکھیے, اپنے سر کو دیکھیے, اپنے قدموں کو دیکھیے. اللہ نے کیا کمی, ایک انگلی بھی ٹیڑھی ہوتی تو ہم کبھی خوش نہ ہوتے. کیا نہیں دیا اس مالک نے. لیکن جو ناشکرہ بندہ ہوتا ہے نا, اس کی نظر بڑی کمزور ہوتی ہے, آئی سائٹ ویک ہوتی ہے, اور خاص طور پہ کلوز کی. کلوز کی کیا, اپنے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ نہیں نظر آتی, دور والے کے پاس جو چیز ہے نا وہ نظر آتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہاں جو نہیں ملا اصل وہ تھا جو چاہیے تھا, وہ مل گیا تو کہتے ہیں نہیں وہ سوری غلطی لگی, وہ چاہیے جو ابھی دوست کے پاس ہے, چلے اللہ نے وہ بھی وہ چاہ دیا, کہتے ہیں نہیں وہ نہیں چاہیے, اس سے وہ چاہیے جو فلاں کے پاس ہے. اور ایسی زندگی کے اندر وہ بے قلی ہے کہ نعمتوں کی جو لذت ہے نا وہ زندگی سے کہی بھی ہے. آپ پر میں اپنے اوپر لے کر سوچے, کیا میں خوش ہوں اس پہ؟ انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے جو مجھے اسٹوڈنٹس بھی دکھ رہے ہیں, یہ لوگ ایک بک پڑھیں گے اصلاح القلوب, اس میں صبر اور شکر کا ٹاپک جس دن آپ سنیں اور پڑھیں گے نا, میں آپ کو ابھی سے بتا دیتی ہوں کہ آپ کو لگے گا آج آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ اس موضوع پہ کچھ سنا ہے. یہ میرا آپ کو چیلنج ہے. بک سامنے ہوگی اور آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن اس وقت میں آپ سے بالکل ایسی ہلکی پھلکی بات کرنا چاہتی ہوں کہ زندگی جو آپ کو مجھے ملی, ہم کس چیز میں کھپا رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے کلچر کی, ہمارا کلچر میں کہتی ہوں پیار سے پاکستانی انڈین لوگوں کو, اور کسی حد تک بنگالیز بھی, یعنی مراد ہے کہ جو اردو جانتے, کیونکہ ہم سب کا لائف سٹائل کچھ نہ کچھ حد تک ملتا ہی ہے نا, ہم رسم و رواج کے دل دادا ہیں, ہم سوشل لائف کو بہت اہمیت دیتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ جو گزر رہا ہے, جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں, وہ عموماً کس چیز کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ آپ کسی ایک شادی میں 2-3 گھنٹے گزار کے آئیں اور بعد میں کسی سے ڈسکس کریں کہ آپ نے وہاں کیا باتیں کی, لوگوں نے آپ سے باتیں کی, لوگ خود اٹھ کے آئیں گے نا آپ کے پاس ٹیبل کے پاس, اچھا السلام علیکم کیا حال ہے, آپ پوچھ تو لیں ذرا آپ کا حال کیا ہے, پھر اللہ کی پناہ آپ بھگ دیں. انہوں نے شروع ہونا جسم کے ایک ایک عضو سے, شکر ہے وہ 360 ہی جوڑ ہے, اس سے زیادہ ہوتے, انہوں نے ایک ایک جوڑ کا درد گنانا ہے, اور پھر آخر میں کہتے ہیں شکر ہے جس حال میں رکھے، یہ شکر ہے. 100 شکوے 100 شکایتیں، جس بندے نے خوش ہونا ہی کوئی نہیں، آپ اس کو سونے کا بن کے دکھا دیں وہ خوش نہیں ہوگا. نہ ہم اللہ کی دیوی نعمتوں کے باوجود اللہ سے خوش ہوتے ہیں. پوچھئے دل سے اپنی زندگی اپنے نصیب پہ کتنے راضی ہیں، ہاتھ کھڑا کیجئے. کون اپنی موجودہ زندگی سے 200% راضی ہے؟ میں تو اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اٹھا دوں گی. میں کہوں گی اللہ نے جو مجھے دیا اس سے اچھا کسی کو نہیں دیا، اور جو اللہ نے مجھے نہیں دیا یہ اللہ کا بڑا پیارا فیصلہ تھا، اور مجھے تو نہیں یاد مجھے کیا نہیں دیا، مجھے تو سب دیا. یہ ہے اسٹیٹ آف شکر، نہ اندر شکوا نہ گلا. اور جب دل میں اچھا بھی پتہ لگ جائے گا، آپ نے ہاتھ تو دونوں کھڑے کر دیے، لیکن جب آپ کی اپنی عملی زندگی پہ آئے گی نا، تو آپ نے وہ سمٹم جب سننی ہے تو پھر آپ نے سوچ میں پڑ جانا ہے. اکثر عورتیں اپنے شوہروں کو کہتی ہیں آپ قدردان نہیں ہیں. اکثر خواتین اپنی ساسوں کے بارے میں سوچتی ہیں کہ یہ بڑی ناقدری ساس ہیں، اور اپنی بھابھیوں کے بارے میں سوچتی ہیں کہ یہ بڑی ناقدری بھابھی ہیں. اور ہر رشتے کو آپ خود ہی دیکھ لیجیے. ہم عموماً دوسروں کو جو سبق سکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں خود سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ اندر کا گلٹ ہوتا ہے، گلٹی کانشیس ہوتے ہیں نا اپنے بارے میں، تو جا کے دوسروں کو وہی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں. اپنی زندگی کو ساری جکڑ بندیوں سے آزاد کریں. رمضان کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہم سب پوری کوشش بھی کر لیں، اور میں نے دیکھا کوئی کوشش بھی نہیں کرتا، واللہ ہی اتنے مطمئن اور اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں کہ مثال ہے کہ اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ 27 مئی کو پہلا روزہ ہوگا، ایکسپیکٹڈ ہے نا. آپ اب لکھیں، یہ میں آپ کو بالکل ایک ورک شاپ اسٹائل دینا چاہتی ہوں، لیکچر دے دے کے آپ بھی سن کے تھک گئے ہوں گے اور مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں دینے کی. آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ مئی کے اینڈ پہ آ رہا ہے، تو دیٹ مین کہ پونا جون بھی اسی میں گزرے گا. پاکستان میں گرمی شروع ہو چکی ہے، آپ جانتے ہیں. آپ یہاں رہتے ہیں، میں ناروے میں رہتی ہوں. دن جتنے لمبے ہونے ہیں نا، وہ 22 جون تک ہونے ہیں. 27 مئی سے لے کر 27 جون تک آپ کہہ لیجئے ہر دن کا روزہ آپ کا. اور آپ اب سن کے حیران ہوں گے، عام طور پہ پاکستان میں یا آپ ادھر لندن بھی ایون نمازوں کے وقت میں دو دو ایک ایک میں بھی 2 دن کے بعد 1 منٹ کا فرق آتا ہے. ناروے میں ہر دن آلموسٹ، یعنی ایک ویک میں آپ کہہ لیں کہ تقریباً 7 دن ہے نا، تو 10 سے 12 منٹ آگے چلا جاتا ہے وقت. یعنی ایوری ڈے 5 منٹ ادھر 5 منٹ، ایسے ایسے دن بڑھتا ہے. یعنی اگر شروع میں روزہ ہمارا 11:15 کھلنا ہے، تو اینڈ پہ ہو سکتا ہے 11:30 پہ بھی چلا جائے، ممکن ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اور میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہ روزے رکھنے ہیں تو ہم نے 27 مئی سے ہی رکھنے ہیں. کیا ہم نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ نہیں کیا؟ ساری دنیا کے مفتی مل کے بیٹھ جائیں اور سارے لوگ ان سے فتوے لینے چلے جائیں کہ مولوی صاحب کوشش کیجئے کہ اس دفعہ رمضان جو ہے وہ نومبر دسمبر میں آ جائے، ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ دن ٹائم سب کچھ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے گرمی میں آئیں کہ سردی میں رکھتے ہیں نا. 30 سال کی اگر زندگی ملے نا آپ کو، تو آپ پورے سال کے 365 دنوں میں روزے رکھ چکے ہوتے ہیں. ہر مہینے 10-10 دن کرتے جائیں، 30 پہ دے لیں. آپ اور میں مجبور کل ہیں اس بات پہ کہ جب اللہ کہتا ہے روزہ رکھو تبھی رکھتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں ایکسیپٹ؟ چلیے دوسری ایکسیپٹنس، فجر کا وقت، جس کے اینڈنگ ٹائم تک آپ کھا سکتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، فجر شروع ہوئی آپ کا کھانا ختم. یہاں تھوڑا بہت 19-20 کا فرق، بلکہ اس سے زیادہ ہی فرق ہے. میں نے یہاں بھی 1-2 سال روزے رکھے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن ناروے میں جو چیز میں نے دیکھی وہاں، کہ رات تقریباً 11:30 بجے مغرب ہوتی تھی، بمشکل بمشکل 1 گھنٹہ ملتا ہے اور عشاء شروع ہو جاتی تھی. عشاء کی 8 تراویح اور فرض پڑھنے، سنت پڑھنے کے بعد، وتر کے بعد جب ہم گھر آتے تھے پڑھنے کے بعد، قریب ہی میں پڑھنے بھی جاتی تھی، تو اتنی بمشکل کہ جا کے جلدی سے 2 روٹیاں بنا کے میاں کو کھانا دے سکو، اور اتنے میں فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا، 2:30 بجے 2:15 بجے. یعنی آپ دیکھیں 11 سے آپ 11:30 کو دیکھیے اور 2:30 کے بیچ میں، ٹوٹل 3 گھنٹے میں مغرب بھی، عشاء بھی، تراوی بھی، افطاری بھی، ڈنر بھی اور سحری بھی. جائیے سارے کوشش کریں اس ڈیوریشن کو بڑھائیں. اللہ کیسے ہمیں توڑتا ہے، میں تو ہر بات پہ خوش ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ اور توڑ ہمیں. 24 گھنٹے کا روزہ کر دیں ہم وہ بھی رکھنے کو تیار ہیں. आपको जब दिल की खुशी से इस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो गई कि मैंने अपने रब की इस बात को तस्लीम कर लिया है, कर लिया ना, पहली चीज़ आपने मई जून के रोज़े एक्सेप्ट किए, दूसरी चीज़ आपने एक्सेप्ट की फजर के टाइम की, कर लिया। चलिए, पाकिस्तान में रहते हैं, इतने नेक लोग हैं माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से वहाँ। मैं कहती हूँ कि कौन कौन है जिनकी वजह से वो मुल्क और वो दुनिया का एक खूबसूरत खित्ता जो है वो कायम है। दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह आपने तो मूसा के साथ ये मौजज़े किए कि उनके ऊपर बादल छा दिए और उनको तो मनोसलवा दे दिया और उनके लिए उनकी कौम पे तो क्या कुछ कर दिया, आप इस रमज़ान के महीने में टेम्परेचर कम कर दें, हमने रोज़े रखने हैं, आप सर्दी कर दें, सारे तो मरी और सवात नहीं जाएंगे ना, नहीं जा सकते, आप हमारे लिए कर दें, करेंगे, कर लें अगर ये दुआ तो क्या ये पॉसिबल है कि हो जाए? आज तक कभी सुना आपने? नहीं होता तो मैं और आप गर्मी की सारी शिद्दतें बर्दाश्त करते हैं। मुझे खुद अच्छी तरह याद है अपने बचपन की कहानी कि तब ये एसीज़ नहीं होते थे, हमारे घर खुले थे अल्लाह के हुक्म से, शुरू से बड़े घर है, लेकिन हमने देखा है कि पानी छोटी छोटी बकेट्स में डाल के कपड़े गीले रख के लोग सरों पे कपड़े फेरते होते थे, कई बच्चों को तो वो कपड़े उतरवा के पानी में बिठा देते थे लोग, ऐसी भी गर्मियाँ होती थी। तो क्या हम उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते? किया ना। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो पूरा दिन गुजरता है भूख की हालत में, क्या हम इसको दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? पाकिस्तान की अगर बात करूं तो आधा वक्त दिन है आधी रात है, हम कहते हैं अल्लाह ताला मैं 12 घंटे भूखी रह लूँगी, 15 घंटे का रोज़ा रखूँगी, बट आधा टाइम रात का और आधा सुबह का, मसलन मैं फजर से मगरिब नहीं, मैं जोहर से ईशा तक का रोज़ा रखती हूँ, मुमकिन है? कहाँ कहाँ बात करेंगे, एक एक कदम पे मैं और आप अल्लाह के हर फैसले पे सरनगु होते हैं। जब आप अल्लाह सुबहाना तआला के इतने मामलों पर, इसको अब आगे एलेबोरेट करते जाए, इफ्तारी का टाइम देख लीजिए, अभी इसी सीरीज़ में मैंने एक दिन एलेबोरेट की थी ये बात, जो इशारत नबी याद आ गई तो जिक्र करती हूँ। 5 नमाज़ें हैं ना, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। आप आज एक नुक्ते पे गौर करके जाइएगा, सबसे कम टाइम किस नमाज का होता है जो रहता है? मगरिब का, जो फौरन ही ख़त्म होती है और अंधेरा छाता है और अगली नमाज आती है। अल्लाह ने रोज़े की इफ्तारी मगरिब पे क्यों रखी? इशा पे होती, ज़रा आप सोचें, सारी रात खाते रहते इशा ना पढ़ते, आखिरी वक्त में जाके पढ़ते। जोहर पे रोज़ा तमाम होता तो जोहर के 4 घंटे किसने छोड़नी थी? वो अल्लाह ने आपको मुझे इतना सा स्लॉट दिया है कि खजूर खा लो, पानी पी लो, और अगर तुम्हारा बहुत ही शरई रोज़ा है तो पकौड़ा भी खा लो और समोसा भी खा लो और रूह अफ़ज़ा दूध में डाल के पी लो, लेकिन उठो पहले नमाज़ पढ़ो। अल्लाह आपकी मेरी मर्ज़ी तोड़ता है। मैंने इस साल सब जगहों में लोगों को एक ही मैसेज दिया है रमज़ान के लेक्चर्स में कि रमज़ान हमारी मर्जियाँ तोड़ने आता है, अल्लाह हमें तोड़ मोड़ के एक नया इंसान बनाना चाहता है, करो जो फिर करते हो, मैं रब हूँ। देखिए, जब कोई अपनी अना में आ जाए या अपना आप दिखाने पे आ जाए तो बच्चा भी ज़िद पे आ जाता है, तो माँ बेबस हो जाती है। जब शौहर को गुस्सा आए वो कहता है आज फिर बन के दिखाऊंगा तुझे कि मैं कवाम हूँ, है ना? भाई बड़े हैं, पहले दौर में बहनें डरती थी तो भाई कहते थे मैंने कह दिया, खामोश। तो क्या अल्लाह को हक नहीं अपना आप मनवाए? रब हमें मनवाता है, ये आपको मुझे सब्र सिखाता है। एक एक दिन में दसियों बातों पे हम अपनी मर्जी छोड़ते हुए महसूस करते हैं, तो क्या उसके बाद ज़िंदगी के जो बाकी 11 महीने हैं उसमें हम अल्लाह ताला से राज़ी नहीं होंगे? अगर एक बंदे को अपनी औकात समझ आ जाए, मैं अक्सर सोचती हूँ कि शिकवा कौन करता है जो अपने आप को बड़ा समझता है। एक छोटी सी मिसाल है, आप देखिए कि आप पाकिस्तान में ख़ुद को लाएं, यहाँ तो मासियाँ और मेड्स को हम वैसे ट्रीट ही नहीं करते जैसे माशाल्लाह हम उनकी माँ दुर्गत बनाते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश बोलती हैं, वो उर्दू बोलती हैं बेचारियाँ, और पंजाबी बोलती हैं। आपकी मासी आती है और आप उसको घर में, वो आपके दाखिल हुई, सलाम दुआ के बाद आप कहते हैं अच्छा आप किचन साफ़ कर लें, वॉशरूम ज़रा अच्छे साफ़ कीजिएगा, आज ऊपर का भी साफ़ कर दें आप, यानी आप उसको दो चार ज़्यादा काम बताते हैं, और उसको ये पता है कि जितना ज़्यादा टाइम वो आपके घर लगाएगी आपने एंड पे उतने पैसे देने हैं, जैसे यहाँ आवरली सिस्टम होता है, मिसाल है। मुझे बताइए कि आपकी इन इंस्ट्रक्शंस को सुनकर आपकी वो मासी या मेड खुश होगी कि परेशान? खुश होगी ना कि आज तो ज़्यादा काम मिल गया, मजदूर को ज़्यादा दिहाड़ी मिले तो खुश होता है ना, और जिस दिन उसको काम ना मिले तो वो क्या कहता है, दिहाड़ी नहीं मिली, आज बच्चों के लिए दूध कैसे लेके जाऊंगा, है ना? अब आपकी मेड लग गई खुशी में, चलो आज तो 5 नहीं आज तो 6 घंटों के पैसे मिलेंगे, करेगी। थोड़ी देर पर फिर बेल बजी, और आपकी बड़ी मॉड स्कॉट दोस्त आई हैं, और दोस्त भी वो है कि जो खुद को कुछ समझती भी हैं और लोग भी उनको बड़ा ऊपर चढ़ाते हैं, बहुत कोई नाम वाली हैं, शोहरत वाली हैं, उनको अपने होने का एहसास है। सेम इंस्ट्रक्शंस अभी जो चंद मिनट पहले आपने एक एक औरत को दी, वो भी तो औरत ही थी ना, उसने आपके इंस्ट्रक्शंस को सुनकर खुशी का इजहार किया और लग गई काम में। सेम इंस्ट्रक्शंस आप अपनी इस दोस्त को दें कि अच्छा आप आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम, चले किचन साफ़ करें, फिर बाथरूम धोएं, फिर ये करें, फिर वो करें, क्या आगे से कहेगी, व्हाट, क्या बात है, आपने मुझे क्या सुन, आप मुझे बताइए कि यही आपकी बातें उसके लिए वैसी होंगी जैसी आपकी मेड के लिए थी, फ़र्क किस बात का है। अब यहाँ वो जुमले हैं जो मुझे आपको मोमिन बनाते हैं। मेड को अपनी औकात पता है कि मेरी तो औकात ही है, मेरी तो हैसियत ही है, और जो आपकी दोस्त है वो अपने आप को कुछ समझती है। जो बंदा अल्लाह के सामने अपने आप को बंदा समझता है वो कहता है अल्लाह मेरी औकात ही है। कभी आपने सुना होगा कुछ ऐसे लोग होते, कहते हैं दो और मार लो, ये पकड़े जूती, ये है मेरा सर, चार जूतियाँ मेरे सर पे मारें, और मैं कमी कमीन, मैंने क्या करना है, मार लो जी और मार लो, क्योंकि वो अपने आप को हल्का समझता है ना, बस जॉब से ना निकालें मुझे, मार दें। जब हम अंदर से अकड़े होते हैं ना, तो हम अल्लाह के आगे भी अकड़ते हैं, और अंदर की अकड़ ऐसे दिखती है, मैं कहती हूँ ये छुपती नहीं है, आपकी चाल से, आपकी ढाल से, आपके कलाम से, और ये नाशुक्रापन जो होता है ना, ये असल में अंदर से खुद को बहुत बड़ा समझने वाला होता है। आज अबुल अमरुल मोमिन अल्लाह के नबी ने कहा, और बाज़ मुहद्दिसीन सिर्फ इस एक हदीस पे ही बहसें करते हैं कि अल्लाह के नबी ने ये क्यों कहा है कि मोमिन का मामला हमेशा खैर पे, और ये बात मोमिन के सिवा किसी और को नहीं दिखती, और उसके अंदर बात यह है कि मोमिन खुद को अल्लाह के आगे झुका हुआ बिका हुआ महसूस करता है। उसको ये पता है कि मालिक ने रोटी दे दी, खाने को तो खानी है। देखिए आपकी हमारी मासियाँ रोटी दे दें आप चुपके से खा लें, चावल दे देंगे तो खा लेंगी, रात की दाल दे देंगे तो खा लेंगी बेचारियाँ, आपके मेहमान ऐसे खाते हैं, क्योंकि मासी को ये पता है कि यही मेरा देने वाला है। आप अपने आपको एक सिर्फ सिंपली मिसाल पे समझिए कि उस मासी को पता है कि मैंने रहना ही इस घर में है, जो देना है इस बाजी ने ही देना है, ना उसके घर में चूल्हा है ना चौंका है, वो इधर बाजी के साथ ही उसने खाना है, तो वो कहेगी भाई जो देते हैं खा लेते हैं, जब नहीं देंगे तो नहीं खाऊंगी, तो किधर जाऊंगी, उससे तो बेहतर है ना कि खा लूँ। ये औकात अपनी बंदा समझ ले तो अल्लाह की कसम हर नेमत अल्लाह की तरफ से एक एक्स्ट्रा बोनस लगती है कि अल्लाह मेरे जैसे बंदे को तूने इतना नवाज दिया, और जब तकलीफ आए, कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, तो बंदा कहता है अल्लाह मैं तो इससे भी ज्यादा सोच रहा था, मेरी खूब सख्ती आनी है, तूने मुझे थोड़े में छोड़ दिया, मेरे करतूत बुरे थे। जैसे एक मिसाल है, शख्स है वो चोरी करता है, तो उसको पता है चोरी की सज़ा 6 महीने की कैद है, और वो पकड़ा गया और अदालत उसको कह दे 15 दिन की कैद है, तो वो चुपके से हंसेगा, कहेगा अच्छा मैंने तो 6 महीने सोचा था ये तो 15 दिन की कैद है। एक ईमान वाला हर तकलीफ़ के ऊपर ये सोचता है, आप अपने ऊपर लें, अगर जब कोई तकलीफ़ आती है किसी किस्म की आती है, आप ये सोचती हैं ना कि थोड़ी आई है, तो आप मोमिन हैं अल्लाह के हुक्म से, और जब नेमत मिले छोटी भी मिल जाए, इतनी एक लुकमा, मैं सोचती हूँ सिर्फ ज़िंदगी में ये दो सबक पढ़ लें हम, तो अल्लाह की कसम खाती हूँ यहाँ बैठ के हमें कोई रुला नहीं सकता, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, हम दुनिया से वो करके जाएं जो करने आए थे, हम तो सारी ज़िंदगी अपने रोग रो के चले जाएंगे। हमारा वो हाल है कि जिस कारखाने वाला अपनी मशीनों को ही ना ठीक कर सके, उसने प्रोडक्शन क्या देनी है। आज इंसानियत इतनी इनफरादी खुशियों और गमों में खो गई, मैं खुश हूँ तो सब खुश हूँ बस ठीक है, मैं दुखी हूँ तो सब दुखी हैं, भाई जंगें लगी हुई हैं दुनिया में, बच्चे भूख से मर रहे हैं दुनिया में, लोग कुफर पे मर रहे हैं, इससे बड़ा गम क्या होगा, और आप अपने दुख में मुबतला हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ और मैं बड़ी दुखी हूँ, तो आप क्या करेंगे। आज हम मुसलमानों का जो दुनिया में ये जो हाल हो रहा है ना, याद रखिए ये सब्र और शुक्र की कमी है, हम ना शुक्रे लोग हैं, वल्लाह ही ना शुक्रे हैं, और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान के नाते से जो हम बाहर के मुल्कों वाले बड़े खूबसूरत कमेंट्स बोलते हैं कि पाकिस्तान में रखा ही क्या है और है ही क्या। कभी आप सुने, मुझे एक ईमेल किसी ने भेजी, तो मैं उसकी अंदर वो नेमते थी, और वो उन्होंने भी इसी सोच से भेजी थी कि खूबसूरत मुकामात और जो कुछ वहाँ की नेमते हैं और जो कुछ है, तो उसके नीचे उन्होंने लिखा था कि कभी आपने इस पर भी गौर किया। लेकिन हमें चूँकि बाहर की साफ सड़कें नज़र आती हैं, हम कहते हैं हमारी सड़कें टूटी हुई हैं। बात पाकिस्तान और इंडिया की नहीं है, ना बात श्रीलंका की और ना मिस्र की है, जो बंदा अपनी मौजूदा हालत पे खुश नहीं है, ये अब एक और एंगल देने लगी हूँ आपको, सब्र और शुक्र का। अगर आप देखें ना, ये जैसे अभी इत्तेफाक देखिए कि ये मेरे पास पानी भी रखा है और गुमान है कि ठंडा है, और यहाँ चाय भी रखी हुई है, ये गर्म है, ये ठंडा शुक्र है तो ये सब्र है। आपकी ज़िंदगी में जब सब्र और शुक्र को जमा कर देंगे ना, तो एक ऐसी मोतदल फॉर्म बनेगी कि जिसमें आप हमेशा भागते हुए दिखेंगे। आप अपने प्यारे नबी को तो देखें, कल सुबह का जिन्होंने सेशन अटेंड किया है रमज़ान सीरत के आईने में, तो वो तो फिर आज के बाद ये नहीं कहेंगे कि हाय रमज़ान बड़ी गर्मी में आ रहा है और बड़ी लंबे दिन है, रोज़ा रख के तो हमने एसीयों में बैठ जाना है और इतनी नित नई चीज़ों से खाना है। उन्होंने गज़वे बदर लड़ी तो रमज़ान में लड़ी, और फतेह मक्का के लिए गए तो रमज़ान में थे। बड़े बड़े मार्के कर दिए उन्होंने रमज़ान में, भला क्यों थोड़ा सा इंतज़ार करते? नहीं, ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई थी। आप सीरत पढ़ के देखें, जितना आप सब्र और शुक्र सीखते हैं उतना किसी और चीज़ से आप नहीं सीख सकते। पहले दौर में लोग माँ नानियों से सीखते थे, बड़े लोग यही कहते थे ना, नानी को देख लो, नानी कैसी है। हालांकि अपने दौर में हमें अपनी नानियाँ बैकवर्ड लग रही होती हैं, अपनी माएँ तो कम ही लोगों को पसंद होती हैं। अक्सर बेटियाँ अपनी माओं से ये कहती हैं, मैं आप जैसी माँ नहीं बनूंगी, मैं बड़ी हो गई तो मैं अपना घर ऐसे नहीं चलाऊंगी जैसे आप चलाती हैं। लेकिन 80% बेटी माँ पे ही जाती है, ये भी याद रखिए। वजह क्या है? क्योंकि वो वक्त का दौर होता है, जब खुद जवान होते हैं तो माँ की वो बातें समझ नहीं आती, जब माँ की जगह पे जाता है बंदा तो उसको समझ आ जाता है। आप और मैं अगर इस सारी चीज़ को देखें कि जब ज़िंदगी में अल्लाह कोई नेमत देता है तो अपने आप को फील करवाएं कि मेरा पेपर है, मेरा टेस्ट है, और अल्लाह ताला दे के दूर से देख रहा होता है, ऑब्जर्व, वो जैसे एग्जामिनर बीच में फिरते रहते हैं ना, ये कर क्या रहा है, ये लिखता क्या है। उस वक़्त हम शोखे हो जाते हैं, हम आपे से बाहर हो जाते हैं, चाल ही बदल जाती है, चलन ही बदल जाता है, हम कहते हैं आज जो एड़ी चोटी का जोर लगाने लगा लो, बट अल्लाह दूर से देख रहा होता है और चेक करता है ये मोमिन है कि नहीं है। और खुशियों में जिसको रब याद ना रहे, अल्लाह की नेमत याद ना रहे, वो बंदा कैसे हुआ? अभी हमने सारे दिन के सब्र को टच किया ना, अपोजिटली लीजिए शुक्र को। रोज़ा शुक्र कैसे सिखाता है? मगरिब का वक्त मिसाल देती हूँ, 8:41 पे, ठीक है? शरण हुक्म क्या? क्या आप 42वें मिनट का इंतज़ार नहीं करेंगे? आप ज़्यादा ज़रा लंबा रोज़ा कर लूँ ताकि शायद मुझे लोगों की निस्बत 1 मिनट लंबा रोज़ा रखने का सवाब हो जाएगा? आप नहीं करेंगे। दुआ मांगने शुरू होते हैं, कुछ लोग करते हैं वैसे, मस्जिदों में बैठे उधर इफ्तारी हो गई, अजान हो रही है और वो लंबी लंबी दुआएं मांग रहे हैं। नहीं मांग सकते, जान के करेंगे तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। बात समझ के, जैसे जान के जल्दी रोज़ा खोलने से रोज़ा बातिल होता है ना, रोज़ा खुल गया और आप नहीं खोल रहे कि नहीं अभी हमारी मस्जिद के जान नहीं और उसकी नहीं, रोज़ा ख़राब होने का ख़तरा। अब आप बताइए, अल्लाह कहता खाओ, आप देर नहीं कर सकते, ये शुक्र है। रोज़ा खुल गया, वक्त आ गया, इफ्तारी का वक्त आ गया, अब आपको खाना ही पड़ेगा। सहरी के वक्त दिल नहीं कर रहा खाने को, अल्लाह कहता खाओ। देखिए पूरी रूटीन बदली जाती है। जब नींद आई होती है कहा जाता है कि अमुल लैल करो, और जब खाने को दिल नहीं चाह रहा होता कहते खाओ, और जब सारी रात के जागे हैं तो फजर की नमाज के बाद अगर चले सनराइज तक जाग गए, लेटेंगे सुबह उठेंगे खट्टे डकार आएंगे, खाना खाया हुआ। हर चीज़ में आप देखिए कि जैसे वो एक रोलर कोस्टर में से नहीं गुजारा जाता किसी को। क्यों? अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे अपनी अमली ज़िंदगी के मुआमलात में कामयाब हो जाएं। आपको पता है कि अरब लोग अपने घोड़ों को रोज़ा रखवाते थे, यानी जिस माशरे में नबी सल्लम भेजे गए थे वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी वही राज थी, लेकिन उनकी शक्ल बहुत बदल चुकी थी। हज का उन्होंने कुछ और हाल कर दिया था, नमाजों की जगह सीटियाँ और तालियाँ बजाते थे, ये चलता था। लेकिन रोज़ा किसको रखवाते थे? घोड़ों को। क्यों रखाते थे भला? क्योंकि लड़ाई भड़ाई की आदत थी। जब जंगें होती थी तो उनकी सबसे तेज़ रफ्तार सवारी और जिस पर बैठ कर वो जंग लड़ते थे वो घोड़ा थी। ऊँट तो नहीं चलेगा ना जंग में, तो प्रैक्टिस के लिए अपने घोड़ों के मुंह के ऊपर एक छिक्कू सा बांध देते थे और खाना नहीं देते थे कि वो खुद भी ना कुछ चरचगे और ना खाना है। क्यों? कहते थे कि अगर जंग में जाएगा और इसका पेट भरा होगा तो ये चलेगा नहीं, और चूँकि इतना नाजुक अंदाम है कि हर वक्त खाना मांगता है तो जब खाना नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए वो रोज़ा रखवाते थे, और असल ये रूह एक ईमान वाले के लिए रोज़े किए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम एक महीना साल में मेरे एक हुक्म को लेकर इस तरह लग जाओ कि जब ज़िंदगी में फिर किसी वक्त कोई इमरजेंसी आए तो तुम्हें वो बात मुश्किल ना लगे। हमने एक बात बचपन से सुनी है, बच्चों को गर्मी सर्दी के लिए तैयार रखना चाहिए। सुनी होगी ना। अब ये गर्मी सर्दी वो नहीं है जिसको अब समर और विंटर कहते हैं, ज़िंदगी की गर्मी, ज़िंदगी की सर्दी। बड़े लोग हमेशा, मुझे वो एक एक जुमला याद आ जाता है, मेरी आंखों के सामने वो बुज़ुर्ग आ जाते हैं जो अक्सर टोका करते थे अपनी बहू बेटियों को, इतने लाड नहीं देखो बाद में पछताओगी, ये ना पहनाओ ये बाद में तुम्हारी मर्ज़ी का नहीं पहनेंगी, क्योंकि गर्मी सर्दी ज़िंदगी में आती है।